वे परम करुण हैं।
रसिक
शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हेतु लीलार उद्गम प्रेम रस निर्यास परिचय आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करते
प्रचार।
महाप्रभु कृष्णचंद्र जी स्वयं रस स्वरूप है, रसिक चूड़ामणि भी हैं, किंतु परम करुण है। परम करुण होने के वजह से उन्होंने देखा ब्रज भक्ति से जगत अछूता है, जगत में ब्रज की भक्ति नहीं है। लोग भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ लोग मुक्ति चाहते हैं और कुछ लोग वैकुंठ की गति को प्राप्त करते हैं। अजामिनी इत्यादि भगवान का नाम करके वैकुंठ तक गए, कौन सा प्रेम उनको हुआ, क्या हुआ, ये उल्लेख नहीं है। वैकुंठ में गए, साधारण उनकी भक्ति, कौन से वैकुंठ में गए या वैकुंठ के निचले में कहा, ये सब का कुछ नहीं। भगवान से उनका क्या संबंध था ये भी नहीं। इसलिए कृष्णचंद्र जी सोच रहे हैं जगत में राग मार्ग का हम प्रचार करेंगे, जिसके द्वारा लोग समझ सकेंगे ये ब्रज की भक्ति क्या है और उसके द्वारा कृष्ण भी उसके द्वारा वशीभूत हो सकते हैं। ऐसे प्रेम भक्ति का मार्ग हम प्रवेश सिखलाएंगे। इसीलिए अनर्पितचरिम चिरा करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयि समुन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति हरिहपूर सुंदर दूत कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे सुरत में सचि नंदन। हनुमान इत्यादि है, राम की सेवा करते हैं, बहुत उच्च कोटि की भक्ति है, किंतु इस प्रेम के द्वारा ब्रज भाव नहीं पाया जाता। हाथ जोड़ करके नीचे खड़े रहेंगे, उनकी कोई सेवा नहीं कर सकते, बस दूर से ऊपर की सेवा कर सकते हैं। रामचंद्र जी उनको गले से नहीं लगा सकते, यह संभव पर नहीं। सखाओं जैसे ब्रज के सखा हैं, सीताम सुबल इत्यादि, मधुमंगल इत्यादि हैं, नंद बाबा यशोदा हैं, कृष्ण को गोदी में लेकर के लाड प्यार करते हैं, ये रामचंद्र जी के लिए कोई संभव नहीं है, हनुमान के लिए संभव नहीं है, भरत जी के लिए संभव नहीं, यहां तक कि सीता जी के लिए संभव पर नहीं है। इसलिए इस राग मार्ग को द्वारा जिससे कि ब्रज की भक्ति पाई जाए, जगत में कुछ प्रचार होना चाहिए। कृष्ण भी इस चीज को नहीं दे सके, क्यों, रस के समुद्र हैं। लताओं को भी प्रेम दिया, ये बात ठीक है, किंतु ये ब्रज भक्ति सहज सरल रूप में इस राग मार्ग का प्रचार नहीं किया, संभव पर नहीं के लिए था। क्यों, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में एक विचार दिया है, कृष्ण रस के समुद्र हैं, रसो वैसह, साथ ही साथ में कृष्ण अखंड अनंत और अखिल षड ऐश्वर्य पूर्ण तत्व है। बात ठीक है, ऐसी कोई चीज बाकी नहीं है रस के संबंध में या भक्ति के संबंध में किसी भी विषय में जिसको कृष्ण को पता नहीं हो, कभी नहीं। ये कृष्ण दो प्रकार के, एक ही परतत्व, किस रूप में, एक रस और बहुरस। एक रस माने क्या, समस्त रसों के विषय हैं जी, जितने प्रकार के शांत दास चक्ष बात्सल्य मधुर, सबके ये विषय विग्रह हैं, उनका रसस्वादन करते हैं और इस तरह से वह हैं, इसका आनंद स्वयं उपलब्ध करते हैं कि वे आत्माराम हैं, इनसे बाहर में रस और कुछ भी नहीं है, सब कुछ पूर्ण गुण में है, किंतु इसके साथ साथ में अचिंत भेदाभेद की दृष्टि से एक और विशेष बात है। वो क्या है? वे बहुरस भी है। एक रस होने के साथ साथ में वो बहुरस भी है। बहुरस माने क्या? समस्त रसों के विषय होने पर भी एक परगत रस है, एक आत्मगत रस है। आत्मरस माने क्या? कृष्ण के अंदर में जो जितने सब रस हैं, रस के समुद्र हैं, उसके विषय हैं, ये तो कृष्ण में है, ये आत्मगत भाव। और परगत माने क्या? परगत माने होता है भक्तों के हृदय में जो रस है, कृष्ण की सेवा करने की जो प्रणाली है, भावना है, उस भावना को के अनुसार में वे कृष्ण की सेवा करते हैं, जिसे कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। ये परगत भाव है। ये दोनों मिला करके इस लीला रस का साधन करने के लिए ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उदित हुए, नहीं तो पूर्ण नहीं हो सकता ये रस। आत्मगत रस से आत्मा राम होने से ये पूर्ण नहीं रहेगा, भले ही वो रहे विषयों के सबके विषय विग्रह, किंतु परगत जो भाव है गोपियों में ये चरम सीमा तक है। और उन गोपियों में भी सबसे चरम भाव है किसमें? चंद्रावली और श्रीमती जी में, या परगत भाव। कृष्ण को सुख करने के लिए सर्वोत्तम जो भाव है, जो कृष्ण की सेवा करके कृष्ण को आनंद देती हैं, और इनका आनंद कृष्ण की आनंद से कोटि गुण अधिक है, परगत भाव। कृष्ण को गोपियों के दर्शन से अपने प्रिय सखाओं के और अपने जितने प्रिय हैं उनको, उनकी सेवा प्राप्त करके कृष्ण को जो आनंद होता है, इनसे एक दो गुण नहीं, कोटि कोटि गुण जो परगत जो भाव है, उसमें गोपियों को, नंद बाबा यशोदा को, सखाओं को कोटि कोटि गुण आनंद होता है। उनमें विशेष करके गोपियों को, और उनमें भी विशेष करके श्रीमती राधिका को आनंद होता है। कृष्ण इस आनंद को अनुभव करने के लिए लालायित रहते हैं। ये परब्रह्म होने पर भी, आत्मा राम होने पर भी, रस के सर्वस्व होने पर भी ये राधिका जी का ये जो भाव है, महाभाव इत्यादि, उनके लिए अपरिज्ञात है, नहीं जानते। ये राधा जी को हमको सेवा करने से क्या सुख होता है, कृष्ण को पता नहीं कौन का इतना आनंद होता है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण इसी चीज के लोभ से इस जगत में आए। राधा या प्रणय महिमा की दिशो आनयुआ, इस श्लोक के लिए राधा जी की प्रणय महिमा कैसी है, वो हमारे माधुर्य को आस्वादन कर उनको क्या सुख लाभ होता है, कैसे उनके हृदय में भावना होती है, कृष्ण के हृदय में आस्वादन करने की लालसा है। और साथ ही साथ में हुआ क्या, उसके भाव की एक छोटी सी बूंद को मैं जगत में भी दे सकूं, इसीलिए अनर्पित चरिंग चिरात करुणयावतीर्ण करो, समर्पयी तुम उन्नत उज्ज्वल रसांग भक्ति। उन्नत उज्ज्वल रस का देने के लिए क्या राधा जी का भाव नहीं, उनकी दासियों के कुछ भावों को जो शोभा है, उसी उन्नत उज्जवल की शोभा, वो खंड रूप में, आंशिक रूप में, जो जीवों का जितना अधिकार है उसको देने के लिए, और इस राजमार्ग की शिक्षा देने के लिए, और अंत में वही भाव जो अभी बतलाया उसको श्रीमती राधिका जी के भाव को आस्वादन करने के लिए, कैसे राधा जी का भाव लेकर के और इनके इन चीजों का मैं आस्वादन करूं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम महाप्रभु जी के लाइन में, हम रूप सनातन इत्यादि के लाइन में, रघुनाथ जी के लाइन में, हम अपने गौरी परंपरा की लाइन में, हम अपने श्रीलभ भक्ति विनोद ठाकुर और प्रभुपाद जी के लाइन में, हम अपने गुरु जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीलभ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के लाइन में, जो कि राधा पक्षीय थे, ये सब कुछ विचार है इसमें दिया गया है। तो ये सब हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो इस लाइन में हम पधारे हैं। हम लोग 7 दिनों में 8 दिनों में इन्हीं सब विषयों को प्रारंभिक स्टेज से, जैसे कि पूज्यपाद श्री विक्रम महाराज जी ने कहा, वहां से आरंभ करते हुए महाप्रभु जी के विशेष अवदान को जो कृष्ण भी नहीं दे सके, राम की तो बात क्या है, और कोई आचार्य नहीं दे सके, उनके अवदानों का हम लोग वर्णन करेंगे धीरे धीरे, आप लोग इसको श्रवण करेंगे। विशेष करके हम लोग आदमी तो इतने आए हैं, हम लोग चाहते थे जो आदमी आए तो इतनी तो व्यवस्था नहीं कर सकते, घर नहीं दे सकते, यह बात ठीक है, किंतु हृदय में घर है, गुरु जी ने हमारे हम लोगों के हृदय में घर बनाया है। कुछ कष्ट हो सकता है इतने आदमियों के लिए, घर इतना हम नहीं दे सकते, बाथरूम में अटैच भी नहीं दे सकते, किंतु यह जो हरि कथा होगी, महाप्रभु की विचारधारा, इसको देने आप लोगों का जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज जी बुलाते थे, आप लोग कष्ट सह करके रहेंगे, मैं जानता हूं कि प्रतिवर्ष आप लोग रहते हैं, आप लोग इसके लिए भूखे हुए नहीं आए हैं, भोजन पान के लिए नहीं आए हैं, घर के लिए नहीं आए हैं, किसी प्रकार से विशेष करके बंगाल के हम देखते हैं, पेड़ों के नीचे में कोई घर नहीं है, आसमान के नीचे में बैठे हुए हैं, स्वयं में हम लोग इनके ऋणी हैं, जो उनको कोई चीज की जरूरत नहीं, बस हरि कथा चाहिए, प्रसाद हम लोग जो कुछ दे देते हैं ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें कष्ट आप लोगों को होगा, किंतु एक महान उद्देश्य के लाभ के लिए आप लोग इसको स्वीकार कर लेंगे। सर दूसरी बात ये कि कल हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के परिक्रमा के अनुसार में हम लोगों को जाना चाहिए था मायापुर में, अंतर्दृष्टि परिक्रमा आरंभ होनी चाहिए थी, किंतु हमारे गुरु जी ने एक परंपरा रखी है कि धाम परिक्रमा कराने वाले, धाम को प्रकट करने वाले श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ये संकीर्तन के भी मुख्य हैं और धाम प्रकाशक हैं। पहले हम लोग उनके चरणों में जाकर के वंदना करेंगे और उनसे आदेश लेकर के नृसिंह देव के यहां जाएंगे जो हम लोगों की रक्षा करेंगे। इसलिए हमको तो ऐसा मालूम होता है ये पद्धति पूर्व की अपेक्षा भी और अधिक सुंदर और उपयुक्त है, इसलिए कल हम लोग वहां नहीं जाकर के हम लोग जाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर के यहां गोद्रम में, और उनके यहां से हम लोग कृपा प्रार्थना करके नृसिंह देव के यहां जाएंगे और फिर उनका प्रार्थना लेकर के मायापुर उद्देश्य से हम लोग प्रणाम करेंगे और अंतिम दिन हम लोग जाकर के वहां पर हम परिक्रमा समाप्त करेंगे और इसके बाद में यहां पर गौ जन्मोत्सव इत्यादि होगा। आप लोग इसके लिए प्रस्तुत रहेंगे, साथ में अधिक पैसे मत लेंगे, नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो काट लेंगे, सोने के आभूषण इत्यादि मत लेंगे, सब चीजों को यहां रख करके उचित रूप में और सब व्यवस्था होगी और
पासपोर्ट नहीं देना, पैसा नहीं देना, मनी
ये तो नटे की और पासपोर्ट एंड मनी वेरी सिंपल 1 लीटर 10 रुपीज 5-15 रुपीज लाइक दिस, और अधिक मत लेना, और बाकी रामचंद्र जी बतला दें और सब जो बातें हैं महाराज जी लोग और सब कुछ बोलेंगे और
बोल दिया
आप कुछ बोलिए अंग्रेजी में थोड़ा सा बोल
देगा कि किरण मेरी जमीन लेना तस्वीर नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम खुदाय श्रीकृष्णाय कृष्ण प्रेम नामने गुरुशी मंशा कल्पतुर्भ्य कृपा सिंधुभव उदितानंद पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो वैष्णववृंद सुधी सज्जन मंडली आत्मन हमार वक्तव्य सर्वप्रथम संक्षेपे जानिए दिए এখনো আবার সে সংক্ষিপ্তভাবেই বলতে হচ্ছে। শ্রীরাম নবদ্বীপ পরিক্রমা বিষয় আমার পূর্ববর্তী বক্তৃমহোদয় তিনি জানিয়েছেন যে শ্রীরাম পরিক্রমা করলে পরে আমাদের সংসার পরিক্রমা বন্ধ হয় এবং সংসার পরিক্রমা বন্ধ করার বিশেষ ঔষধ দওয়াই सत्य श्रीधाम परिक्रमा श्री मंदिर परिक्रमा
सुतरां
से परिक्रमार कथा नहीं यतक्षण आलोचना हुए किंतु आलोचना शुद्ध परिक्रमा जातायात कर ले कि সেখানে তত্ত্বদর্শন রাখতে হবে, সেখানে বাস করা নিত্যকাল স্থিতি ছিল। সরস্বতী প্রভুপাদ তিনি বলতেন যে রিটার্ন টিকিট কেটে কখনো দামে আসতে নেই, তা আমরা তো ফিরে যাওয়ার জন্যই এসেছি। তাই এখানে বসবাস করতে হবে এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর যে শিক্ষা, চৈতন্য মহাপ্রভুর যে তত্ত্ব সিদ্ধান্ত, সেটা বিশেষভাবে আলোচনা করতে হবে এবং প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে থাকতে হবে। তত্ত্ব সিদ্ধান্ত জেনে নিলেই সবটা হল না, এটার একটা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড আছে, সে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডও দরকার। তাহলে সব সময়ের জন্য এখানে বাস করতে হবে, হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও ধামে বাস করা চলে। যদি ধামের কথা চিন্তা করা যায়, যদি ধামের ধামবাসীগণের শিক্ষা নেওয়া যায়, তাহলে স্মরণমুখে সেটা সেবা হয়। তা আমরা কি করব, আমাদের পূর্বপূর্ব গুরু গোস্বামীগণ তারা সবাই বলেছেন যে এখানে বাস করতে হবে স্থায়ীভাবে পারমানেন্টলি, তাহলে কি করা হবে? শ্রীলা প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ তিনি বলছেন আরাধিতম নববনং ব্রজসাম নমতে, নারাধিতম নববনং ব্রজ এব দুর্গে, আরাধিত দিগসুত ব্রজনাগরস্তে নারাধিত দিজসুত ন তদিহ কৃষ্ণ। অর্থ কি বলব, যদি এই গৌরধামকে আশ্রয় করা যায় তাহলে বৃন্দাবন ধামকে আশ্রয় করবার একটা উপায় হয়, আর যদি এটা না হয় তাহলে চেষ্টা বৃথা। গৌর সুন্দরকে যদি উপাসনা করা যায় তাহলে রাধা গোবিন্দের সেবা প্রাপ্তির খুবই সম্ভাবনা, এসব কথাগুলো আছে। আবার কোন জায়গায় বলা হচ্ছে, নবদ্বীপ ধামই গুপ্ত বৃন্দাবন, আবার বলা হল বৃন্দাবনই গুপ্ত নবদ্বীপ ধাম। এসব কথাগুলোর সামঞ্জস্য আছে, শাস্ত্রকারগণ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমাদের গৌড়ীয় গুরুবর্গ গোস্বামীগণ তারা এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেসব বিষয়ে আমাদের খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করতে হবে, বুঝতে হবে। আমরা সবসময় সুধামে আসবার সুযোগ পাই না, কিন্তু যেখানেই থাকি না কেন সেখানেই যদি আমরা চিন্তা ভাবনা রাখি, নবদ্বীপ ধামে এসে গৌরধামে এসে এখানকার যে তত্ত্ব সিদ্ধান্ত সেগুলো যদি সর্বক্ষণ আমরা স্মরণ করি যেখানেই থাকি না কেন, তাহলেও ধামে আসা হয় এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ হয়, তার ভক্তগণের কৃপা লাভ হয়। এসব কথাগুলো শাস্ত্রে আছে। সুতরাং সুযোগ আমাদের যে কোনোভাবেই লাভ করতে হবে যেখানেই থাকি না কেন। বাড়িতে ফিরে গেলে ধামের ধাম থেকে এইসব চিন্তাগুলোই রাখতে হবে। আমরা যত দূরেই থাকি না কেন, আমাদের এসব চিন্তা ভাবনাগুলো আমাদিওকে সঞ্জীবিত করে। আমরা যেন ভুলে না যাই, এখানে এসে যে স্পিরিট নিয়ে যাব আমরা, সেই স্পিরিটটা বজায় রাখতে হবে। এটাই বড় কথা। ধামবাস থেকেও ভালো যদি আমরা সেই চিন্তা ভাবনাগুলো নিয়ে চলতে পারি। সেই চিন্তা বাস্তব অবাস্তব তার ক্ষেত্র আছে, সেই হিসাবেই আমাদের চলতে হবে। প্রথম মুখেই তো আমরা মুক্ত হতে পারি না, বদ্ধজীব আমরা, ফেটার সোল। সুতরাং আমাদের তদনুসারেই ব্যবস্থা নিয়ে চলতে হবে। যদি নিষ্কপট থাকে, সরলতা থাকে, তাহলে কোনোদিন ভগবান গুরু বৈষ্ণব আমাদের সেসব কৃপা করবেন, আমরা যোগ্য হব। আমাদের হৃদয়ে সেই ভাব রেখেই ধাম দর্শন করতে হবে, গুরু বৈষ্ণবকে দর্শন করতে হবে, শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে হবে এবং সব তত্ত্ব সিদ্ধান্ত সেইভাবে আমাদের আলোচনা করতে হবে। আমার সময় আজকে কম, সেই জন্যে আমি এইখানেই শেষ করছি। মনসা কল্পতরুভ্যস্য কৃপা সিন্ধুভ্যৈরপি পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।